نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم محسن انسانیت اس میں سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں آخری نشست میں ہم نے آپ کے سفر کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا سنت تھی آج ہم دیکھیں گے کہ کیا آپ کے اندر جذبات تھے کیا آپ ایموشنل تھے یا آپ خوشی غم ناراضگی غصہ ایسے جذبات سے آ رہی تھے یا آپ کے اندر یہ جذبات تھے کتاب کا پیج نمبر 127 ہے مڈل آف دا پیج جذبات انسانیت کا کوئی تصور ہم جذبات کو الگ رکھ کر نہیں کر سکتے از اٹ ٹرو دیکھیے آپ کے سامنے ایک لیپ ٹاپ رکھا ہے اس کے کوئی جذبات نہیں ہے آپ کے سامنے گلاس رکھا اس کے کوئی جذبات نہیں ہے لیکن ایک انسان ہے اس کے جذبات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انسانی جذبات بہترین اسلوب پر کار فرما تھے آپ بہت ہی صاحب حساس ہستی تھے اور خوشی میں خوش اور غم میں غم سے متاثر ہوتے اس کو نوٹ کریں اچھا کردار اور اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی خوشی میں آپ خوش ہوں اس کو خوش کریں یہ نہیں کہ آپ اس کی خوشی کے موقع پہ جلنے بھننے لگ جائیں اور اس کو باتیں کرنا شروع ہو جائیں اور اس طرح کی باتیں کریں اور دوسری بات ہے کہ اگر کوئی غم ہے غمزد ہے تو آپ اس میں ہنسنے لگیں مسکرانے لگیں تو یہ چیز اگلے کو اچھی نہیں لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نام نہات یعنی بہت بڑے بڑے یا فیمس بڑے لوگوں میں سے نہ تھے جو دنیا جہان کے غم میں گھلے جاتے ہیں لیکن گھر کے لیے سنگ دل اور تغافل کیش ثابت ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگ جو بہت فیمس ہوتے ہیں وہ باہر والوں کے لیے تو بڑے درد مند ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے سامنے بالکل سخت پتھر ہوتے ہیں اور گھر میں جاتے ہی اپنے اوپر ایک ایسا وہ کہنا چاہیے کہ جال سا بن لیتے ہیں کہ جس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا تھے بہرحال باہر کی زندگی پر ہنگامہ ہوتی ہے گھر کی پھیکی اور بد مزہ آپ کو ازواج کے ساتھ سچی محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ہی پیالے میں پانی پیتے اور جہاں وہ منہ لگاتی وہیں منہ لگاتے انصار کی بچیوں کو بلواتے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلیں حبشیوں کے ورزشی کرتب اس انداز سے دکھائے کہ حضرت عائشہ کی ٹھوڑی یعنی چن آپ کے کندھے پر تھی بار بار پوچھتے کہ کیا تم سیر ہو گئی ہو یعنی دل بھر گیا وہ کہتی ابھی نہیں دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت عائشہ بہت چھوٹی عمر کی تھی آپ دیکھیے 10-12 سال کی بچی کیا ہوگی آج بھی آپ سوچیں تو اللہ کے نبی ان کے جذبات کا خیال رکھتے تھے آج کہتے ہیں جی 5 سال سے زیادہ ایج ڈفرینس ہو جائے تو میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے یا لڑکا بہت بڑا تھا تو لڑکی چھوٹی تھی تو وہ میچیورٹی لیول نہیں ڈیولپ ہوا یا لڑکا چھوٹا اور لڑکی بڑی ہو تو کہتے ہیں نہیں ہمارا لڑکا تو بھولا بڑا ہے یہ تو لڑکی اس کو اپنے ہاتھوں میں لے گی یہ صرف اور صرف تربیت کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کا اتنا بڑا فرق تھا کیا انیوژل فرق تھا لیکن آپ اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتے اس کی اس عمر کے تقاضوں کو سمجھتے اور آپ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے حضرت صفیہ کنویں پر سوار کرانے کے لیے آپ اپنا گھٹنا بڑھا دیتے اور اس پر آن جناب اپنا پیر رکھ کر سوار ہو جاتے ہیں سوچیے ذرا شوہر ہے نا اللہ کے نبی ایسے اپنا گھٹنا رکھتے وہ اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھتی یعنی ایک قسم کا فٹ سٹیپ بن جاتا کہ جس کو پار کر کے وہ آگے جاتی ایک مرتبہ سفر میں ناقہ کا پاؤں پھسلا اور حضور اور حضرت صفیہ دونوں گر پڑے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے دوڑے ہوئے آپ کے پاس آئے آپ نے فرمایا پہلے خاتون کی طرف توجہ کرو ایک بار ساربان کہتے اونٹوں کو چلانے والا ساربان نے اونٹوں کو تیز چلایا تو فرمانے لگے دیکھو آپ گینے ہیں ذرا احتیاط سے اسی محبت کی وجہ سے ایک بار شہد نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی یہ تو آپ سب کو یاد ہوگا ہاں سورۃ تحریم میں جس پر عتاب میں نے ڈانٹ ذرا سختی کی بات آئی کہ حلال شے کو حرام نہ کرو لِمَ تُحَرِّمُ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ اپنے بچوں کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بڑے گہرے تھے حضرت ابراہیم کو رزاد کے لیے ایک لوہار کے گھر میں مدینہ کے بالائی حصے میں رکھا گیا تھا ان کو دیکھنے کے لیے خاصا فاصلہ طے کر کر تشریف لے جاتے گھر میں دھواں بھرا ہوتا مگر وہاں بیٹھتے اور بچے کو گود میں لے کر پیار کرتے تو آپ کو ایک سینٹیمنٹل اور ایک ایموشنل انسان نظر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بندے کو اس کا حق دیتے تھے حضرت فاطمہ آتی تو اٹھ کر استقبال کرتے خود تشریف لے جاتے اپنی کہتے ان کی سنتے ان کے صاحبزادوں امام حسن اور حسین سے بہت ہی پیار تھا ان کو گود میں لیتے ان کو کندھوں پر سوار کرتے ان کے لیے گھوڑا بنتے حالت نماز میں بھی ان کو اپنے کندھوں پر بیٹھنے دیتے ایک بار اقرو بن حابس یہ صحابی تھے انہوں نے آپ کو جناب حسن کا بوسہ لیتے دیکھا تو تعجب سے کہا میرے تو 10 بیٹے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا ذرا نوٹ کیجئے مگر آپ بوسہ لیتے ہیں. فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, غصہ نہیں. دیکھیے بچوں کو ٹیم کریں, بچوں کو ٹیکل کریں, ان کی اچھی بری بات پہ ٹوکیں, لیکن جو عام وقت میں آپ کے دل میں بچوں کے لیے وہ پیار ہو, ابلے, جوش پڑے, محبت دے. جب عام وقتوں میں بچے سے آپ پیار کریں, سو رہا ہے تو اس کو پیار کریں, چل رہا ہے تو پیار کریں, بیٹھا ہے تو پیار کریں, آتے جاتے اسے محبت کریں گے نا, پھر جب وہ غلط کام کرے پھر ٹوکیں. ہمارا معاملہ کا بعض دفعہ اس سے اپوزٹ ہوتا ہے. انہیں ابراہیم صاحبزادے کی وفات ہوئی تو صدمے سے آنکھیں ڈب ڈبا آئیں. اسی طرح ایک صاحبزادی کی وفات آپ کی موجودگی میں ہوئی, امی ایمن کنیز چلا چلا کر رونے لگیں. آپ نے منع فرمایا تو وہ کہنے لگیں کہ آپ خود بھی تو رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ایسا رونا منع نہیں, یہ رونا جس رقت کی وجہ سے ہے وہ اللہ کی ایک رحمت ہے. یعنی اگر کوئی مرتا ہے اور اس مرنے کے وجہ سے غم آتا ہے, روتا ہے انسان, تو یہ تو انسان کی بات ہے. لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, نوح خانی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہ ہوں. پھر آپ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انٹرٹینمنٹ آپ کا گھر تھا, یا بیویاں یا بچے. آج بھی ایک نیک پاک مرد جس کی کوئی آؤٹ ڈور سرگرمیاں نہیں, اور جو دوستوں میں آدھی آدھی رات تک نہیں بیٹھ رہا, اور جس کو اور بہت سارے کام نہیں ہیں, تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی خوش رہے گا؟ یہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت کا نظام رکھا ہے کہ گھر میں ایک مرد کو انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے, اور محبت بھی ہوتی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, بات چیت بھی ہوتی ہے, بے تکلفی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں چاہتا کہ انسان پتھر کا بت بن جائے. لیکن جو مرد عموماً یہ سب کچھ باہر دیکھ سن لیتے ہیں یا آزما لیتے ہیں, پھر گھر والوں کے لیے ان کے دل میں کوئی کشش نہیں رہتی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب بچہ فوت ہوا تو آپ نے کہا کہ یہ رونا اس سے تو منع نہیں, یہ تو رحمت ہے. کیونکہ جب ہم رو لیتے ہیں تو ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے, دل ذرا جم جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اب دل کا غبار تو نکل گیا, تو رونے میں کوئی حرج نہیں. اپنی صاحبزادی ام کلثوم کی قبر پر کھڑے ہوئے تو اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عثمان بن مزون کی میت کے سامنے بھی آپ کی آنکھیں اشکبار تھی. اب یہ ایک عام صحابی تھے, لیکن اللہ کے نبی ان کے ساتھ محبت محسوس کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. اس کو بھی نوٹ کر لیں کون سے صحابی تھے جن کی پیشانی پہ آپ نے بوسہ دیا. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے, کس کیا جا سکتا ہے. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد آپ کو ابو بکر صدیق نے چوما تھا. اپنے رونے کی کیفیت کو خود بیان فرمایا, آنکھیں اشک آلود ہیں, دل غم زدہ ہے, مگر ہم اپنی زبان سے اس کے ماں سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہے. غم کی حالت میں اکثر زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے, حسبی اللہ نعم الوکیل. رونے میں اونچی آواز نہ نکلتی بلکہ ٹھنڈا سانس لیتے, اور ہانڈی کے ابلنے جیسی آواز سینے سے نکلتی. تو بھرپور انسان تھے, جذبات میں خوشی غم کا اظہار کرتے تھے. یہ دل حساس جب اپنے رب کے حضور میں عرض و نیاز کر رہا ہوتا یا قرآن ورد زبان ہوتا, تو ایسی حالت میں بھی بسا اوقات پلکوں پر موتی چمکنے لگتے. یعنی قرآن پڑھنے کے دوران بھی آپ رونے لگتے تھے, اور یہ بھی دل کی نرمی کی علامت ہوتی ہے. کسی کو اگر قرآن سنتے ہوئے یا قرآن کی محفل میں رونا آئے تو یہ اس کی سچائی اور اس کے دل کا نرم ہونے کی دلیل ہے. اور آج ہماری آنکھیں خشک ہو چکی ہیں, قرآن سنتے ہوئے بھی نہیں روتے, اس وقت بھی ہم کچھ اور ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانی چاہیے. ایک بار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائش کر کے قرآن سنا. وہ جب سورۃ نساء کی اس آیت پر پہنچے, فقی فیضہ جینابکا, سورۃ نساء کی آیت 41 ہے, اور اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو آنکھوں سے سیلِ اشک رواں ہو گیا, یعنی آپ رونے لگے. ایک تو گواہی کا احساس, شدت کا احساس تھا کہ آپ کس طریقے سے قیامت کے دن جواب دہی کا شکار ہوں گے, کیسے آپ سے امت کا حساب پوچھا جائے گا, اور دل کی نرمی کی بھی بات ہے. آج بھی مجھے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کی پوچھ گچھ کا احساس ہونا چاہیے. ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھیں کہ جس کا دل نرم ہوتا ہے نا, جو اس کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں, اس کے بارے میں روتا ہے, ڈرتا ہے, اللہ مجھ سے کل اس پہ نہ پوچھنا, اللہ اس کے بارے میں نہ پوچھنا. یہ احساس پیدا کرے, سب نے مجھے بچا لینا ہے لیکن میری ذمہ داریوں نے مجھے پکڑا دینا ہے کہ یہ میں پوری نہیں کر سکی, میں یہ کام نہیں کر سکی, میں نے یہ لیا ہوا یہ نہیں. اب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ ذمہ داری لینا نہیں, لیں اور ذمہ داریوں کو نبھانے کی پوری کوشش کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اس معاملے میں. یہ رقت سر چشمہ ان جذبات ہمدردی اور شفقت کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت سے تھی, اور خصوصت اسلامی جماعت کے افراد سے. حیرت اس نزاکت احساس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں کس درجے کے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا. تو کیا دکھا آپ کو؟ مجھے تو ایک بہت حساس انسان دکھا, جو جذبات میں تو آتا ہے لیکن جذبات کو کام پہ हावी नहीं होने देता। हम जब जज्बाती होते हैं तो सर में दर्द शुरू हो जाती है, फिर हम बिस्तर पर लेटते हैं तो हमें नींद आ जाती है। हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम उसमें इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमारे मसल्स फुल हो जाते हैं, हमारे स्ट्रेच हो जाती है बॉडी। जज्बात रखें, काम में ना रुकावट बने, लिख लें। हर खुशी, गम, नफरत, मोहब्बत, एक्साइटमेंट, कोई भी चीज़ जो आपको आपके मकसद से रोक ले, उससे पीछे कर दे, उसको छोड़ दे, वो दुश्मनी है। क्योंकि बाद वह गम को बनाते हुए हम बीमार हो जाते हैं। हाय दुखी, हाय दुखी, हाय गमजदा, गमजदा, हाय फलां की जुदाई, फलां के बगैर नहीं जी सकते, फलां के बगैर नहीं जर सकते, ये नहीं वो नहीं। अब क्या हुआ, आप परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि इंसान बैलेंस रवैये के साथ अपने जज्बात में रहे। और जज्बात ज़िंदगी हैं, ज़िंदगी का तो आगाज़ ही जज्बात के साथ होता है। बेहिस लोग या जिनमें हसासियत नहीं होती, वो तो पत्थर है। लेकिन ओवर एस्टिमेट नहीं होना या ओवर सेंटिमेंटल नहीं होना, ये जो एक जुमला में से अक्सर लोग बोलते हैं ना अपने लिए, मैं बड़ी हसास हूँ, ये अपनी बुराई करते हैं। हमारे कल्चर में ये लफ्ज़ बड़ा अच्छा अच्छा है, वो चीज़ वेरी सेंसिटिव, यानी उसको हथेली का छाला बना दो, अब उसे बात करते हुए डरो, बात सुनते हुए डरो। नहीं, कोई हसास नहीं है आप। हसास एक बात से हो जाए कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो। सबसे ज्यादा एहसास दिल में ये हो कि मेरा रब मुझसे नाराज ना हो, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, दैट्स इट। अगर रब राजी तो जग राजी, जग राजी तो सब राजी। इसलिए अपने काम को आसान दर्जे पे करिए और अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें। अब एक और खूबसूरत टॉपिक है, क्या आप में मजाक था, आप जॉली थे, जौक के मजाक कैसा था, और क्या हंसने से दीनदारी ख़त्म तो नहीं हो जाती। आइए इसको पढ़ते हैं। पीछे भी इसका जिक्र हुआ कि रसूल खुदा खंदा रवी, खंदा रवी कहते हैं स्माइली फेस की सिफत से मुत्तसिफ थे, यानी आप में ये खूबी थी। बल्कि फरमाया व तबस्सुम का फी वजह अखी का सदक़तुन, तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुराते हुए आना भी कार खैर है। क्या आप और मैं ये सदका रोज नहीं दे सकते, दिन में कितनी दफ़ा दे सकते हैं। किसी ने एक बंदे से कहा कि तुम इतने गरीब क्यों हो, तो उसने कहा मेरे पास है जो नहीं कुछ दूं। तो उसमें उसने जो बातें की उसमें एक ये भी कही कि सदका दे दिया करो। कैसे दूं, मेरे पास है क्या, का स्माइल दे दो। आप यहाँ बैठे हैं, अपनी सुन्नत बना लें, अपना स्लोगन बना लें, स्माइल एंड सलाम, जहाँ मिले अस्सलाम वालेकुम। और आप देखिए कि ये कितना खूबसूरत पोस्चर बन जाता है। एक बच्ची नई नई ससुराल में आती है, सुबह उठी सास को देखा स्माइल अस्सलाम वालेकुम, ससुर को देखा अस्सलाम वालेकुम स्माइल, शौहर से जब नज़र मिली अस्सलाम वालेकुम, घर में जो औरतें खवातीन हैं उनसे मिठे सलाम। कौन जो उस बच्ची से मोहब्बत करने से आपको रोके। लेकिन आज हम इतने तुंक मिजाज हो गए, किसी को स्माइल भी नहीं देते, कहते खाम खा इनको लगेगा मैं बड़ी खुश हूँ इनके घर में। तो भाई आप ना स्माइल दें, आप दुखी रह लें, आपका नसीब है। तो स्माइली फेस सबको अच्छा लगता है। आप खुद देखें, आप अपने खानदानों में ढूंढें, दोस्तों में देखें, अपने इर्द गिर्द किसको लोग पसंद करते हैं। मेरी एक दोस्त थी तो उसकी दो तीन भाभियाँ थी, सारी बहुत अच्छी थी, पर एक को सब पसंद करते थे, सब की ज़ुबान पे उसका नाम रहता था। तो एक दिन कहने लगी कि मैंने सोचा है कि आखिर इस भाभी को सब क्यों पसंद करते हैं। तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि ये ऑलवेज स्माइल करती हैं। दूसरी भाभियाँ निस्बतन खामोश थी, ऐसे देखने में दुखी लगती थी या संजीदा लगती थी कह लीजिए, लेकिन ये स्माइल थी, कुछ नहीं बस देखे स्माइल, बात भी नहीं करनी ज़्यादा, लेकिन वो स्माइल दूसरों के लिए आपका एक तारुफ बन जाता है। तो चेहरे को स्माइली रखें, झुरियाँ उतारें, आपके चेहरे पे तफक्कुरात नहीं होने चाहिए, तशद्दुद का इजहार ना हो, बल्कि आप अपने आप को रिलैक्स फील करें। और अपनी बच्चियों की भी यही तरबियत करें, कुछ नहीं दे सकते ना अपने घर वालों को, स्माइल तो दे दो। यकीन करें बड़े बड़े तूफान आपके स्माइल के आगे से गुजर जाएंगे। किसी को लाख गुस्सा आया, कोई आपको ताना देना चाहता है, कोई आपको डांटना चाहता है, किसी का मूड खराब है, खाना खराब हो गया, शौहर गुस्से में, स्माइल, ऐसे लगता है जैसे ब्लड प्रेशर जो है ना कम से कम वो 10 डिग्री नीचे आ जाता है स्माइल देखकर अगले का। आपको किसी पर बहुत गुस्सा आया हो आगे से वो स्माइल दे दे, क्या आपको गुस्सा रहेगा या बढ़ेगा या कम होगा। अब क्या, अब इसका स्माइली चेहरा, इसको मैं क्या दुखी करूं। हमारे घरों के, हमारे इदारों के, हमारे दीनी जगहों के मसले खत्म हो जाए अगर एक दीनदार दूसरे दीनदार को देख के सिर्फ स्माइल देना शुरू कर देना, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन आज कल्चरली मुझे ऐसे लगता है कि हम इंडो पाक, इंडिया का तो हमें नहीं पता, मुझे लगता है वो तो बहुत ही स्माइली होंगे, लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोगों में से स्माइल कम होता जा रहा है दिन ब दिन। और इसको बचपन से आदत डालिए कि स्माइल करना है और सदका समझ के करना है, दें जरा स्माइल एक दूसरे को। अच्छा, बाद लोग स्माइल देखते हुए फिर वो खीखी खीखी हंसना शुरू हो जाते हैं, स्माइल कितना का होता है, पूरे दांत नहीं दिखते थे अल्लाह के नबी के। चंद मौके हैं पूरी आपकी ज़िंदगी में कि जिसमें आप इतना हंसे कि आपकी ये दाढ़ें दिखी, और साहबी ने वो भी नोट कर लिया कि इस बात पे अल्लाह के नबी इतना मुस्कुराए कि आपकी साइड के दांत खुल गए, वरना आप स्माइल देते थे लाइट हल्का सा सिंपल सा। आप देखेंगे कि स्माइल के साथ एक इंसान ने आपको दूसरों की नज़रों में खूबसूरत भी करता है। शक्ल जैसी भी हो, फीचर्स जैसे भी हो, रंग काला है, गोरा है, दाने निकले हैं, कुछ है, स्माइली फेस होगा तो आप खूबसूरत लगेंगे। और अगर स्माइली नहीं है तो आप देखेंगे कि कई फीचर्स बहुत शार्प होते हैं, बड़े खूबसूरत चेहरे होते हैं लोगों के, लेकिन चेहरे पे एक अजीब थकन और एक उकताहट और एक ऐसी कैफियत का इजहार होता है कि जो दूसरों को खुश नहीं करती। एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, वो आपको सुनाती हूँ। इंग्लिश में जिनको ना समझ आए उनसे माजरत है, जिनको आ जाए वो खुश हो जाएंगे। इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड यू गेट पिम्पल्स। लोग कहते हैं ना स्ट्रेस में रहें तो दाने निकल आते हैं। इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड यू गेट पिम्पल्स, इफ़ यू क्राई यू गेट रिंकल्स, रोने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। सो जस्ट स्माइल एंड गेट डिम्पल्स। ये बेबी की तस्वीर बनी हुई है, ये किसी के प्रोफाइल पे थी तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर कर दी। डिम्पल्स पड़ते हैं, स्माइल के साथ चेहरा फ्रेश लगता है, बूढ़े नहीं होते। अगर आपको ये कह दूँ ना जो स्माइल ज़्यादा करती है वो और बूढ़ी नहीं होती, तो फिर देखिए आपका स्माइल कहाँ टपकता है। पता चला वहाँ भी स्माइल दे रहे हैं जब नहीं था देना, और मसला खड़ा हो गया। लेकिन बहरहाल स्माइल ही रहना चाहिए। गुस्सा अपनी जगह, नाराज़गी अपनी जगह, तरबियत अपनी जगह, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और थकन कम हो जाती है, आप फील करते हैं आपके कंधों का बोझ खत्म होता है। मैंने कहीं पढ़ के भी एक जगह सुनाया था कि जब हम स्माइल करते हैं तुम्हारे कितने ज़्यादा जिस्म के अंदर वो मसल्स होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं और कई इंजाइम्स बॉडी में गिरते हैं। जैसे आप कहते हैं ना हाथ पे कोई मॉइस्चराइजर लगा ले तो आपके हाथ नरम हो जाते हैं ना, इस तरह हमारे जिस्म के अंदर एक चीज़ होती है इंजाइम्स, इंजाइम्स कह लें लिक्विड्स या कुछ भी ऐसी कई चीज़ें ऐसी अल्लाह की तरफ से जिस्म के अंदर पंप होती है। वही जहन में लाए कि आपने पंप किया और आपके हाथ में एक मॉइस्चराइजर का एक कतरा गिर गया। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें गिरती हैं जब हम स्माइल करते हैं, लेकिन हम करते नहीं। और ये स्माइल घर जाके तो बिल्कुल नहीं करना ना, ज़रूरत है रोज़ा रख के स्माइल। अस्तग़फिरुल्लाह तौबा अस्तग़फार, रोज़ा रख के स्माइल करते हैं ये लोग, इन्होंने दीन का मजाक किया हुआ है, तो ऐसा नहीं करना। बहरहाल चलिए, ये आपको स्माइल देने के लिए था। तो आपने फरमाया यानी कि तेरा भाई के सामने मुस्कुराते हुए आना भी एक कार्य खैर है। आपकी ये शान बयान हो चुकी कि कान बिसामन दाहेकन, बिसाम कहते मुस्कुराने वाला स्माइली शख्स, दाहेकन हंसने वाला, अजीम कारनामे अंजाम देने वाली शख्सियत के लिए ये एक लाजमी वसफ है कि वो फराइज़ हयात के बोझ को अपने तबस्सुम से गवारा बना दे और साथियों के दिलों में घर कर ले। सोचिए इस बात को, आप अगर दुखी महसूस करते हैं, यानी आप में से किसी को अगर लगता है कि मैं दुखी हूँ, मेरे घर के हालात अच्छे नहीं, मेरे शौहर का अखलाक अच्छा नहीं, मेरे फाइनेंशियल हालात अच्छे नहीं, 10 बातें और सोच लें इससे बढ़ के, बच्चे भी बदतमीज़ हैं, ससुराल वाले तो हैं ही ना कदरे, और अपने बहन भाई भी जुगतें करते हैं और मजाक करते हैं और तंज करते हैं, आप इन सब का इलाज कीजिए स्माइल से। करते हैं तो करते रहे, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। हमारी एक बहुत अच्छी आंटी जी थी, मेरी दोस्त की अम्मी थी, तो उनके हालात वाकई बड़े एडवर्स थे। यानी अनयूजुअल है कि मैं कहती थी कि अगर ये नावल लिखें तो इनकी ज़िंदगी पे एक नावल लिखा जा सकता है, इतने अप्स एंड डाउन थे। तो कभी जब बहुत एडवर्स हालात होते थे ना तो वो बैठ के खूब रोती थी, आंसू भी और गोरा रंग और ऐसे उनके पसीना भी गिरना आंसू भी गिरने, जब खूब रोती थी ना फिर एकदम खिड़खड़ा के हंसती थी, कहती चलो लाओ अब खाना खाते हैं, छोड़ो मैं क्या करूं, एकदम उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती थी। फिर इतना हंसना कि वो हंसने में से उनको रोकना मुश्किल हो जाना, कहती थी अब ये तो काम मेरे ख़त्म नहीं होने, चलो अब ये करते हैं। तो अपना इलाज खुद करें, कोई आपके आंसू नहीं पहुंचेगा। याद रखिए रोता बच्चा माँ का, हंसता बच्चा सबका। लोग ऑलवेज स्माइली लोग पसंद करते हैं, आप रोती शक्लें बना के लोगों को मिले लोग आपसे जान छुड़ाना शुरू कर देंगे। बड़ी मरवत के मारा कोई दोस्त कोई सहेली आपकी है तो वो आपकी बात सुन लेगी, अदरवाइज नहीं सुनेगी। तो लिहाजा स्माइल दीजिए, और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में जितने चैलेंजेस थे ना, यकीन करें आपने उसका मुकाबला स्माइल से किया, वरना आप इतने स्ट्रेस्ड रहे हैं हर वक्त दुखी रहे, आप गिन के देखेंगे आगे जाकर कि अल्लाह के नबी पर एक एक महीने में इतने सदमे पड़ते थे। हम जैसे होते तो चेहरा ही उतरा रहता। हमारे तो एक और भी कल्चर में है, कोई मर जाए किसी के घर में तो बस 15-20 दिन तक तो हंसना भी नहीं है, तैयार नहीं होना, कपड़े नहीं बदलने, मेकअप नहीं करना, कहीं हंसते देखा कहता देखो सास को मरे अभी 15 दिन हुए ये बहू हंस रही थी। ये गलत तरीके हैं। तो ये चीज़ें एक आर्टिफिशियल अपने ऊपर एक चादर डालने वाली चीज़ है, तो स्माइल की, जिस दिन बहुत काम हो घर में उस दिन स्माइल दें, जिस दिन बहुत बोझ हो, बहुत सारे मेहमान आ रहे हो उस दिन ज़्यादा स्माइल दें, देखिएगा आपका काम आसान हो जाएगा, थकन भी कम हो जाएगी और मेहमान फिर और खुशी से आएंगे कि ये हमारे आने पे भी स्माइली है। अच्छा, बाद लोग खिला पका पकू के रख लेते हैं, तो जब मेहमान आता है तो उसको देख के दुखी, थक गई हूँ, कल से सोई नहीं हूँ, टांगे हाय टांगे दुख गई, 2 दिन से, वो कहेंगे अच्छा आपने मैं 2 दिन पुराना खाना खिलाया है, 2 दिन से खाना पका रही है, अच्छा चेहरा सूखा हुआ, अच्छा जल्दी करें, अच्छा मेहमान खाना खाएगा अभी प्लेट रखी जाके धोनी शुरू हो जाएंगे सिंक में, कि जल्दी जाओ जाओ, घड़ी देखेंगे कल बच्चों ने स्कूल भी जाना है, साफ पता चला ये मियाँ की दावत पे आए हैं लोग, बीवी की दावत पे कोई नहीं आया। अपने आप को हम देखें, देखिए अट्रैक्शन पैदा करें, हर बंदे को अच्छी चीज़ अच्छी लगती है, बुरी चीज़ बुरी लगती है, अपने आप को आईने में खड़ा करते हैं, बस मैं हूं कैसी, किसी 4 लोगों से जरा राय तो लें जो सच बोलें और उसके बाद आपको कभी ना देखें जिंदगी में, आपके बारे में वो क्या सोचते रहते हैं, फिर आप देखेंगे कि आपको एहसास होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लेना ये टेस्ट, पूछेंगे किस किस से, मैं तो बहुत सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी बुखल नहीं किया किसी की बुरी बात बताने में और कभी किसी की अच्छी बात पे तारीफ करने में, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, झूठ को कभी गलत नहीं कहा और गलत को सही नहीं कहा, वो कहते ना कि जहर हलाहल को कभी मैं कह ना सका कंद, कड़वी चीज़ है तो मैं मीठा नहीं कहूँगा उसको, आप मीठे हो जाएं आप मीठे कह देंगे आपको, तो हमेशा याद रखें कि रियलिटी बेस्ड लोगों की तारीफ करें, बाज लोग झूठी तारीफें भी कर रहे होते हैं, झूठी मोहब्बतों का इजहार कर रहे होते हैं, नहीं सच बोले, सच की बेस पे जो जिंदगी होती है ना उसमें याद नहीं रखना पड़ता कि कल क्या कहा था और अब उसी को रिपीट करना है, बस रिलैक्स रहें, इंशाल्लाह खैर होगी। खैर आगे देखते हैं, यानी इतने मसरूफ शख्स हैं और वो तबस्सुम से अपने उस बोझ को दूर करते हैं और साथियों के दिलों में घर कर ले, आपका हाल ये था, कद काना युबासितु अस्हाबिहि बिमा यूलिजु हब्बहु फिल कुलूब, देखिए कितनी प्यारी बात है कि आपकी कैफियत क्या थी, यानी आप ऐसे बेतकल्लुफाना अंदाजे मजाक से पेश आते कि रुफका के दिलों में आपकी मोहब्बत रच बस गई थी। अब ये एक थोड़ा सा स्माइल से बढ़कर अगली चीज़ है, ज़ौके मजाक, ये भी अल्लाह की देन होती है, क्या कहते हैं इसको आप लोग अपने हम जुबान में, क्या कहते हैं, जॉली होना, ये अपनी जुबान ही लगती है इंग्लिश, उर्दू कौन तो लगता अपनी कोई नहीं है, लेकिन आप देखिए किसी का जॉली होना, या बस लोगों में हिस्से मिजाज बहुत होती है, हमारे अपने घरों में ऐसे कई लोग हैं, बस वो बात कर दे कितनी देर बाद बंदे को हंसी आती रहती है कि ये बात क्या कर गए ना, आम लोगों को सोचना पड़ता है, वो लतीफे पढ़ पढ़ के याद करते हैं फला मौके पर सुनाने और वक्त पर भूल जाती है, चिट्ठी नहीं मिलती कि किधर गया लतीफा, तो ये अल्लाह की देन होती है, थोड़े थोड़े जॉली रहे। और वो लेक्चर था ना कि 60 वेज टू प्लीज योर हस्बैंड हैप्पी, तो उसमें एक टिप मैं खुद भी सुन रही थी कि बहुत कम औरतें ये जानती हैं कि शौहरों को या मर्दों को जॉली बीवियां अच्छी लगती हैं, और हम सबसे जॉली होंगे मियां के सिवा, इल्ला माशाल्लाह, इंतकाम लेने अब हम उसको स्माइल भी दें, ये कैसे हो सकता है, है? तो स्माइल ही रहे, उसे दिलों में मोहब्बत आती है, आप हंसी दिल लगी की बातें करते और मजलिस में शगुफ्तगी पैदा कर देते, मगर तवाजुन व इतेदाल हमेशा मलहूज रहता है, इसको नोट करें, बाज लोग हंसने लग जाए तो उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है, वो जैसे हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है गाड़ी को, वो रुकते ही नहीं है, तो तवाजुन हो, हंस रहे हैं तो हंस लिए फिर स्माइल फिर खामोश हो गए, बस इतना ही। तो मजाक क्या है कि मजाक का रंग आटे में नमक की तरह हल्का रहता, अब नमक तेज कर दें आटे, जितना ही नमक डाल देंगे तो क्या होगा, कड़वा हो जाएगा ना, तो हर वक्त भी हंसना हंसाना अच्छा नहीं होता, और इसमें भी ना तो खिलाफ हक कोई बात शामिल होती, ना किसी की दिल आजारी की जाती, और ना ठट्ठे लगाकर हंसना मामूल था, ठट्ठा नहीं लगाते थे, ये जो आवाज़ आती है ना हंसने की, ये नहीं पसंदीदा, और ख़ास तौर पे जो ठा ठा ठा, और जो खुशियों के मौके पे, और जब कभी कोई 4 लोग मिले हों ख़ास तौर पे आपस में करीबी, तो फिर आप देखिए कि उस वक़्त जो आवाज़ें ऊँची होती ना वो पसंदीदा नहीं है। एक दफ़ा एक सिस्टर थी तो उन्होंने मुझे कोई मैसेज छोड़ा, बहुत पुरानी बात है, तो वो किसी पार्टी में थी अपनी दोस्तों की, उन्होंने मुझे कोई मैसेज छोड़ना था तो मैसेज छोड़ दिया, अल्लाह का करना देखे कि उन्होंने मुझे मैसेज छोड़ के अपना फ़ोन कहीं छोड़ दिया, बंद करना छोड़ गई, आधा मिनट 1 मिनट कितना होता है, बाद लोगों ने लिमिट लगाई होती है, अल्लाह अकबर, उस वक्त ये व्हाट्सएप वाइबर वाइबर कुछ नहीं होता था, मैंने देखा आधे घंटे का किसी ने मैसेज छोड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, ये हुआ क्या, उसके तो इतने मिनट्स आया हो गए होंगे, मैंने वो सुना, जब शुरू में सुना उनकी बात थी, उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको जो चीज़ अपने दिल की बता रही हूँ जिससे मैं इतना डरी बाद में, कि अल्लाह ताला रहम करे, वो फोन बंद करना भूल गई, तो जो फिर वहां हंसी मजाक और बातें आधा घंटा पार्टी की थी वो मुझे घर में बैठ के मिल गई। तो मैं क्या सोच रही थी कि इस वक्त मैं अपने कमरे में बैठी ये आवाजें सुन रही हूं तो मुझे कितनी ऑकवर्ड लग रही हैं, कोई हंस रहा है, कोई चीख रहा है, अरे हा हा हा, जो भी एक माहौल होता है बेतकल्लुफ पार्टियों का। मैं ये सोच रही थी अगर मैं वहां होती तो क्या मुझे इतना बुरा लग रहा होता, या अगर मैं खुदा ना खास्ता ऐसे बातें करती तो मुझे तो नहीं एहसास होता, और जो कर रहे हैं उनको बुरा नहीं लग रहा ना, लेकिन बाहर बैठे को एहसास होता है। तौबा की मैंने उसके बाद कि अल्लाह ताला कभी भी कोई ऐसा मैसेज नहीं छोड़ना कि पहले फोन ना बंद कर दो। लेकिन ये सच है कि बहुत बेतकल्फी में जब हम बहुत ऊंचा ऊंचा बोलते हैं ये भी अच्छा नहीं लगता, झूठ भी नहीं बोलना उसमें, ना किसी की दिल आजारी की जाती है और ना ठट्ठे लगाकर हंसना मामूल था, गुंचों का सा तबस्सुम होता। अब गुंचा क्या होता है, कलियां खिलती हैं, फूल में बढ़लती हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी फीलिंग आती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा दांतों के कीले, ये जो साइड की चीजें होती हैं, ये दिखाई देते, हलक नजर ना आता, यानी ये जो ऊपर हमारी टॉप होती है ना इसके ऊपर, ये नहीं नजर आती थी। इसलिए एक मीडियम तरीके से एक लाइट सा हंसना ये तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत तेजी से या बहुत जोर जोर से हंसे तो वो पसंदीदा नहीं होता। एक बार ताज्जुब से हजरत अबू हुरैरा ने कहा आप हमसे मजाक भी फरमा लेते हैं, इरशाद फरमाया हाँ मगर मैं खिलाफ हक कोई बात नहीं कहता, यानी मजाक में भी लतीफे नहीं सुनाते, झूठे झूठे ये हुआ वो हुआ, सच बात करते थे। यहाँ आपके कुछ नमूने हम देखते हैं जो सुन्नत में मौजूद हैं। किसी साहिल ने सवारी का ऊँट मांगा, फरमाया हम तुम्हें ऊँटनी का बच्चा देंगे। साहिल ने हैरत से कहा कि मैं इसे लेकर क्या करूँगा, फरमाया हर एक ऊँट किसी ऊँटनी का बच्चा ही तो होता है। आपके पास इधर एक बुक होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, और एक ऑपोजिट है उसकी, नबी सल्लम के आंसू। वो मुस्कुराहटें ना उसमें ऑलमोस्ट सारे ही वो आपके वाक्यात जमा है जिसमें आप स्माइल किए या आप मुस्कुराए, और आंसुओं में आपकी दुख वाली गम वाली चीजें। इसी तरह एक बुढ़िया ने आकर अर्ज की मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। आपने मजाहन कहा ए उम्मे फुलां जन्नत में कोई बूढ़ी औरत नहीं जा सकती। वो रोती भी उठकर जाने लगी। हाजरीन से फरमाए इसे कहो कि अल्लाह ताला इसे इस बुढ़ापे के साथ जन्नत में नहीं ले जाएगा, बल्कि इसका इरशाद है इन नानशा ना हुन्नानशान फजल ना हुन्न अबकारन उर्वन इतराबा। ये सूरत वाक्य की आयत होगी गालिबन, ये सूरत वाक्य आयत 35 से 37 है। क्या फरमाया कि मुरादे के जन्नत में जाने वालियों को अल्लाह ताला जवानी से सरफराज करेगा, यानी जन्नत की औरतें कुंवारियां और जवान बना दी जाएंगी और अपने शोहरों की हम उम्र बना दी जाएंगी, उनके अंदर जिस्मानी खूबसूरती भी होगी और अखलाकी खूबसूरती भी होगी। इसी तरह जाहिर या जुहैर नामी एक बदवी थे, काले रंग के शख्स थे, इनसे बेतकल्फी थी। आप इस बदवी दोस्त को शहर से मुतल्लिक कामों में इमदाद देते और वो देहात से मुतल्लिक आपके काम करके लाता, नीज मुखलिसाना जज्बे से हदिये देता जिसकी कीमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 स्टार अदा कर देते। चुनाचे फरमाते कि जाहिर देहात में हमारा गुमाश्ता है, गुमाश्ता में जो हमारी घुमी हुई चीज़ों को ढूंढता है, और हम शहर में इसके गुमाश्ता हैं। यही जाहिर एक दिन बाजार में अपना कुछ सौदा बेच रहे थे, आपने पीछे से जाकर चुपके से आंखों पर हाथ रख दिए, अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं ना, और पूछा बताओ मैं कौन हूँ। वो पहले तो कुछ ना समझे, फिर जब मालूम हुआ तो फर्त इश्तियाक यानी शौक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से अपने कंधे मलते रहे। फिर आपने मजाहन कहा कौन इस गुलाम को खरीदता है, जाहिर कहने लगे या रसूलुल्लाह मुझ जैसे नकारा गुलाम को जो खरीदेगा घाटे में रहेगा। फरमाया तुम खुदा की निगाह में नाकारा नहीं हो। बड़ा खूबसूरत ये वाक्या, ये मैंने सुना भी, एक ब्लैक स्पीकर हैं, हबशी हैं, यासिर फजाका शायद उनका नाम है, तो उनकी ज़ुबान से उन्होंने इसको इतना इमोशनल करके सुनाया था कि वो खुद भी रो रहे थे कि अल्लाह के नबी एक स्याह गुलाम को, एक हबशी गुलाम को ऐसे पीछे से, वो जिसको हम कहते हैं ना क्लावे में लेकर, पीछे से लेकर कह रहे हैं कौन इसको मुझसे ख़रीदेगा। और जब अल्लाह के नबी ने उनके लिए कहा कि ये कीमती है और तुम जन्नत में हो गए, तो वो फिर रोने लगे कि अल्लाह के नबी वाकई मेरी कीमत वहाँ इतनी ज़्यादा होगी, तो अल्लाह तो शक्लें सुरतें नहीं देखता। तो अब ये आपका बेतकल्फी का अंदाज था जो आप अपने दोस्तों के साथ रखते हैं।